ओम शांति। आज हमारे साथ भगवान बाई जी हैं। आप सबके तरफ से बाई जी को स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आप 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, 27 वर्षों से समर्पित हैं, दिल्ली पांडव भवन में 8 वर्ष सेवा दी है। आप वर्तमान समय शांतिवन में किचन में सेवा करते हैं। इन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में 5000 से अधिक स्कूलों में बच्चों को मूल्य शिक्षा पर प्रवचन किया है। 800 से अधिक जेलों में कैदियों को ईश्वरीय संदेश दिया है। विभिन्न भाषाओं के मैगजीन में 2000 से अधिक लेख द्वारा भी सेवा की है। भगवान बाई जी एक साधारण परिवार से निकले हैं। इन्हों को बाबा का ज्ञान एक रद्दी के किताब से मिला। अभी आपका विषय है जागंती ज्योति कैसे बने। अभी सुनेंगे भ्राता भगवान बाई जी से। ओम शांति।
ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है सदा जागती ज्योति कैसे बने। अभी आप सभी ने बाबा की मुरली सुनी होगी। बाबा ने कहा कि सच्ची दिवाली जिसकी सदा ज्योति जागती है। और बाबा ने यह भी कहा कि आपको लोग साधारण रूप में न देखें, लेकिन आपका जगा हुआ दीपक उनको नजर आए। और आगे चल करके हमें उस स्वरूप से लोग देखें, क्योंकि इस स्वरूप की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जितना हम स्वयं जागती ज्योति रहेंगे, उतना हम दूसरों को भी जगा सकेंगे। जितना हम खुद जागृत रहेंगे, हमारा सदा ही उमंग उत्साह बना रहेगा। जिसका आंतरिक आत्मिक दीपक बुझा हुआ है, अर्थात जिसका देह अभिमान है, उसका उमंग उत्साह नहीं होगा। न सेवा का उमंग, न पुरुषार्थ का उमंग। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय हमारी ज्योति सदा जगती रहे। जिसकी ज्योति सदा जागृत है, वो वायुमंडल को बहुत अच्छा बना सकता है। जिस जगह पर वो है, वहां का वायुमंडल ऑटोमेटिकली शुद्ध बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ी मनसा सेवा है। अगर अंदर से हमारी ज्योति जागृत है, तो हमारा मनसा सेवा है। और जिसकी ज्योति सदा अंदर से जागृत है, उसको खुद को भी अति इंद्रिय सुख मिलता रहेगा। जिसका अंदर से खुद का दीपक जगा हुआ है, उसको खुद को अति इंद्रिय सुख मिलेगा। और जिस अति इंद्रिय सुख के कारण इस संसार की क्षणिक सुखों के तरफ से उसका ऑटोमेटिकली वैराग बना रहेगा, उसको कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। कब? जिसका अंदर से दीपक जागृत है। जब कभी हमारा जाने अनजाने दीपक बुझ जाता है, थोड़ी सी लाइट कम हो जाती है, तब विनाशी चीजों के तरफ, पुराने संस्कारों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जिसको कहते हैं माया के आकर्षण में आ गए, जिसकी अंदर से ज्योति जागृत है, उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्तियां सदा होंगी। उसके जीवन में गुण और शक्तियां परछाई की तरह काम करेगी। शक्तियों को बुलाने की जरूरत नहीं, सहन शक्ति आ जाओ, एक एक शक्ति को एक एक गुण को बुलाने की जरूरत नहीं। जहां अंदर से दीपक जागृत आए उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी, और जहां गुण और शक्तियां इर्द गिर्द में है हर क्षेत्र में उसको सफलता है, वो बुराई में भी अच्छाई देखेगा, उसका संकल्प में भी कंट्रोल रहेगा, बीती हुई बातों को बिंदी लगा देगा। कब? जब हमारे अंदर से जागती ज्योति है, जिसकी ज्योति सदा जागती है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। रात को सोया है तो भी उसका टाइम सफल हो रहा है, कर्म कर रहे हैं तो भी, चलते फिरते भी उसका टाइम सफल हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसी स्थिति बनाओ। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था मैं सच्चे दीपकों की मैं दिवाली देखना चाहता हूं, अर्थात हरेक के भ्रुकुट में निरंतर जागती ज्योति बाबा देखना चाहता है, उसको कहेंगे सच्ची दिवाली। और जब ऐसी दिवाली होगी तब धरा पर कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी। जब तक दीपक नहीं जगेंगे तब तक लक्ष्मी नहीं आती। दुनिया में कहते हैं ना लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, एक तो सफाई करते हैं उसके बाद दीपक जलाते हैं। वो स्थूल दीपक जलाने से तो लक्ष्मी नहीं आएगी। क्यों? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को तो लाइटिंग में दिखता ही नहीं है, तो कौन सी लाइटिंग अंदर से आत्मा की दीपक की ये बात है। और बाबा कहते हैं कि मैं ऐसी दिवाली अब देखना चाहता हूं, दीपक जगे रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये स्थिति को अब बनाओ, निरंतर मेरा दीपक सदा जगता रहे, जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज कईयों की समस्या है मेरा योग नहीं लगता, मेरे किसी के संस्कार नहीं बनते, मुझे सहन नहीं होता, ये प्रॉब्लम होता है। क्यों? अंदर का दीपक बुझा हुआ है, उसके तरफ ध्यान नहीं है, उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जहां अंधेरा है वहां प्रॉब्लम्स ही है। दीपक जलाओ सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपना दीपक सदा जागृत रखना है, और जिसका दीपक सदा जागृत है उसके अंदर के जो भी पुराने संस्कार हैं, पुराने आदतें हैं, वो सब दब जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं इमर्ज रूप में रहेगी, वो एक्टिविटी में नहीं आएगी। कोई भी पुराने संस्कार एक्टिविटी में कब आते हैं? जब दीपक थोड़ा सा कम हो जाता है। सत्युग में सदा देवी देवता खुश रहते हैं। क्यों? उनका दीपक सदा जागता है। उनको इसीलिए खुशी नहीं कि उनके वो सोने के महलों में रहते हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, उनका शरीर बड़ा कंचन काया है, इसीलिए उनके चेहरे खुश नहीं है। चेहरा खुश इसीलिए ज्योति अंदर से जागृत है। यही हमारा वास्तव में पुरुषार्थ है। और जिसका दीपक सदा जागृत है उसके दिल में दीपराज सदा रहेगा, उसको निरंतर उसकी स्मृति रहेगी, घर की स्मृति रहेगी, आने वाली दुनिया की स्मृति रहेगी, उसकी दृष्टि में बल आएगा, वाणी में बल आएगा, तब जब अंदर से वो दीपक सदा जागृत है। जितना हमारा वो आंतरिक दीपक सदा जागृत है, उतना ही हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में टिक सकेंगे। जितना दीपक जागृत है उतना स्वराज्य अधिकारी स्थिति, आत्मा अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रहेगी। और जो संगम युग में अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है उसको भविष्य के राजा का आसन मिलता है। जो भ्रुकुटी के आसन पर नहीं बैठता, कौन नहीं बैठता? जो सोचता है, निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, जिसके जीवन में तनाव है, टेंशन है, वो भ्रुकुटी के आसन का आनंद नहीं लेता। जिसको बाबा कहते स्वधर्म स्वमान, ये क्या है? भ्रुकुटी के आसन पर बैठना। और जो आसन पर बैठेगा उसकी हर इंद्रिया उसका कहना मानेगी। आज इंद्रिया क्यों नहीं मानती? क्योंकि अंदर का वो दीपक में कमजोरी है। और जितना यहां संगम युग में निरंतर हमारा दीपक जागृत रहेगा तो भविष्य में यादगार रूप में हमारे मंदिरों में 24 घंटा दीपक जागृत रहेगा। कोई कोई मंदिर में साल में एक बार दीपक जलाते हैं, कोई कोई मंदिर में सप्ताह में एक दिन जलाते हैं, कोई कोई मंदिर में सवेरे शाम जलाते हैं, कोई कोई मंदिर में निरंतर जगता है। क्यों? संगम युग में जिन्होंने जैसा दीपक जगाया उसके यादगार बन गए। बाबा ने कहा ना, सबकी दीपक तो जग गया लेकिन उसका उजेरा कितना है वो चेक करो। जैसे एक होता है जीरो बल्ब, एक उसे बड़ा होता है 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट और भी बड़ा होता है। तो आप चेक करो कि मेरा वो दीपक कहां तक उजेरा फैला रहा है, कहां तक उसके वाइब्रेशन जा रहे हैं। क्योंकि जितना जिस एरिया तक आपकी लाइट जाती है उतने एरिया के आप भविष्य के राजा बनेंगे। अगर विश्व का राजा बनना है तो आपकी लाइट विश्व तक पहुंचनी है। हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी यहां रहते हो भी विश्व के कई सेंटर्स पर दादी की पालना का भास होता था। क्यों? दादी की लाइट पूरा विश्व में फैलती थी। तो जहां तक आपकी लाइट फैलेगी वहां तक आत्माओं को पालना मिलेगी, उनके जीवन का समस्या का समाधान होगा। भले आप यहां बैठे लेकिन आपकी लाइट की पालना मिलती रहेगी, सकास मिलता रहेगा। और उतना एरिया का वो राजा बनता है। तो चेक करो मेरे दीपक की लाइट कहां तक पहुंच रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में ये पुरुषार्थ करना है, अपने दीपक की लाइट को चेक करना है और वो सारा दिन जगता रहे। जिसका अपने दीपक के ऊपर ध्यान है, स्वयं का दीपक के ऊपर ध्यान है, उसको आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है उन बातों की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। दूसरे की कमी कमजोरी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। आज किसी को कि दूसरे की कमी और कमजोरियां नजर आती हैं, क्यों? दीपक थोड़ा सा कम हो गया, जिसको बाबा कहते दियाभिमान आ गया। इसलिए निरंतर हमें अपनी ज्योति को जागृत रखना है और तब हमारे जीवन में खुशी आएगी। बाबा कहते ना, क्योंकि बाबा का वर्तमान समय 2-3 साल से बाबा कह रहे बच्चे आगे चल करके आपके सेवा का साधन क्या बनेगा, चलन और चेहरा। आपका चेहरा सदा खुश लोग देखना चाहेंगे, लेकिन किसका चेहरा खुश होगा? जिसका आंतरिक वो दीपक जागृत है, सदा जागृत होता है, उसका चेहरे पर खुशी होगी। वो निडर होगा, ना चिंता होगी, ना भय होगा। इतना ही नहीं, जिसका अंदर से दीपक जागृत है वो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, उसके कर्म भी प्रेरणादायक होंगे, वो दूसरों के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस रहेगा। इसलिए बाबा कहते कि क्या करो, अपना दीपक सदा जागृत रखो। इसे वायुमंडल परिवर्तन कर सकेंगे, स्वयं को सुख मिलेगा, संस्कार परिवर्तन होंगे, गुण और शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। और जिसका दीपक अंदर से जागृत है, उसके जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां कोई भी भूत नहीं रहते हैं। भूत कहाँ रहते हैं? जिस घर में अंधेरा है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का दीपक सदा जागृत है वहां कोई भी विकार रूपी भूत नहीं रहेंगे। भूत बंगला छोड़ करके ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, सदा अपना दीपक जागृत रखना है। तो दीपक जागृत रखने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। लेकिन सदा वो दीपक जगता रहे उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, उसके ऊपर कुछ हम चर्चा करते हैं। ये तो आपको महत्व बताया, अगर हम दीपक जागृत रखेंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। लेकिन वो जगता रहे सदा, उसके लिए क्या करें और क्यों दीपक बुझ जाता है, उसका कारण और निवारण। तो सबसे पहली बात है, कभी कभी हमारे मन में निगेटिव विचार चलते हैं। और क्यों चलते हैं? निगेटिव के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे पहला कारण है अभिमान। थोड़ा अभिमान आया, दीपक बुझ गया, लाइट कम हो गई। तो इसलिए बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ने से पूर्व 3 बातें कही थी, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। जो निरहंकारी है वही अपना दीपक सदा जागृत रख सकता है। इसलिए अगर मुझे दीपक को जागृत रखना है तो निरहंकारी स्थिति में रहना है, क्योंकि आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण है हमारा खुद का अभिमान। हम दूसरे को दोष देते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। कारण और नहीं है, कारण हम खुद हैं। इसीलिए मुझे नम्रचित का संस्कार धारण करना है। जो नम्रचित का संस्कार धारण करता है उसका दीपक सदा जगता है, क्योंकि जहां नम्रता आई वहां निगेटिव थॉट्स खत्म, व्यर्थ विचार खत्म, वहां समर्थ विचार। और जहां समर्थ विचार आए वहां दीपक सदा जागृत रहता है। इसलिए हमें अपने अंदर के अभिमान को खत्म करना है, क्योंकि मय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है झूठे मय, दूसरा होता है असली मय। जिसके झूठे में जागृत असली मय छिप जाता है। चलो दो मिनट, तो इसलिए सदा क्या करना है, असली मय को जागृत रखना। असली मय अर्थात आत्मा मय, और उसके लिए झूठे मय जितने भी हमारे हैं, कौन से झूठे मय, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, कोई कला होगी, कोई गुण होगा, ये सब हमें बाबा ने सेवा के लिए दिव्य साधन है, हमारा नहीं है, है किसका, बाबा ने दीवी गिफ्ट है। लेकिन कभी कभी बाबा ने दीवी कला को, विशेषता को हम अपना समझ करके क्या होते हैं, उस कॉन्शियस में जब रहते हैं, और जब हमें उस अनुसार किसी ने पूछा नहीं, रिगार्ड नहीं दिया, तो निगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाते हैं, और जहां निगेटिविटी आई वहां दीपक बुझ। सदा हमारी भ्रुकुटी में अपना दीपक सदा जगता रहे, उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है निरहंकारिता, नम्रचित का गुण जीवन में आए, क्योंकि जिसने नम्रता धारण की वो हर जगह पर हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है। जहां नम्रता आई वहां सब गुण और शक्तियां भी आ गई, इसलिए कहते ना विद्या विनयन शोभते। हमने इतना ये बाबा की इतनी अच्छी विद्या ली, कौन सी विद्या, वो कोई भौतिक ज्ञान से नम्रता नहीं आएंगी, लेकिन जहां स्वयं का अस्तित्व को जाना, अपने आप को पहचान लिया, शिव बाबा को पहचान लिया, तो हमारे में क्या आना चाहिए, नम्रता। अगर इतना दिन से हम मुरली सुन रहे, ज्ञान सुन रहे, तो भी मेरे अंदर नम्रता नहीं आई, मेरा किसी से टकराव होता है, इसका मतलब मैंने अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना, मैंने बाबा जो है जैसा है वैसा नहीं पहचाना। हम कहते हैं हम तो बाबा को तो पहचान लिया, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, इसका मतलब बाबा को नहीं पहचाना, क्योंकि बाबा ने ड्रामा भी तो बताया है, हरे का ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है सब कल्याणकारी है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाबा को जिसने पहचान लिया चित्र, जो है जैसा है, उसके अंदर क्या आना चाहिए, विनम्रता। और जब विनम्रता आई हमारे निगेटिव थॉट्स खत्म हो गए, और जहां निगेटिविटी खत्म हो गई आत्मा की ऊर्जा बच गई, उससे ज्योति जागती रहेगी। आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, कहने से कोई ज्योति नहीं जागती, सिर दर्द हो जाएगा। नहीं तो कहीं कहते मैं आत्मा हूं, पता नहीं मुझे अनुभव होता ही नहीं है, क्यों सारा दिन निगेटिव सोच रही है, क्यों करता है, कैसा करता है, फिर एक तरफ से आत्मा आत्मा भी बोल रहे, कैसे होगा। इसलिए मैं जो व्यर्थों से बिल्कुल मुक्त है, निगेटिव से मुक्त है, उसकी ज्योति जगती रहेगी, वो सदा जागती ज्योति में रहेगा, और जिसकी ज्योति जगेगी वो औरों को भी जगा सकेगा। और बहुत काल के अभ्यास से अनुभव भी औरों को होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं नम्रता का गुण धारण करना जरूरी। तो जो कुछ कला है, विशेषता है, सब किसकी है, बाबा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बहुत सुंदर घटना अभी जस्ट में मराठी मासिक के लिए लिखी थी एक लेख में, एक शेठ जी थे, काफी धनवान थे, तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, जिस रास्ते से भी जाते थे, जहां भी जाते थे, राम राम, नमस्ते, सलाम, या जो भी कुछ कहते थे। लेकिन उसके बदले वो सेठ जी क्या कहते थे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, राम राम कहने के बजाय कहने के बाद क्या करते हैं, वापिस राम राम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, वापिस नमस्ते बोलते हैं, सलाम बोलने के बाद सलाम बोलते हैं। लेकिन वो सेठ जी बोलते थे कह देंगे, जब भी उनको नमस्ते या राम राम बोलते थे वो कह देंगे बोलते थे। तो सेठ जी तो बहुत बड़े थे, इसीलिए किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने हिम्मत की और हिम्मत करके उनको पूछा कि आप हम आपको नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, लेकिन आप तो उस समय कह देंगे ऐसा क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने हंस करके बताया इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। कहा कि मैं तो एक बहुत गरीब व्यक्ति था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे को कोई नमस्ते नहीं बोलता था, राम राम नहीं बोलता था, मेरे की तरफ देखता भी नहीं था कोई। लेकिन एक बार एक लक्ष्मी माता मुझे प्रसन्न हो गई और उस लक्ष्मी माता के कारण मैं अभी सेठ जी बना हूं। तो अभी जो भी नमस्ते करते हैं या राम राम कहते हैं या सलाम कहते हैं वो मुझे नहीं कहते, वो मेरे पास आई हुई लक्ष्मी माता को कहते हैं। मैं तो वही हूं जो पहला गरीब था, वही हूं मैं, तो कोई बदला नहीं है। तो इसीलिए जब भी नमस्ते बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, मैं सारा दिन इन सभी को गिनता हूं और रात को जाकर के जो कमरे में मेरा लक्ष्मी माता का जो फोटो रखा है उनको जाकर के बताता हूं, हे लक्ष्मी माता आज इतने लोगों ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम बोला है, इसीलिए मैं कह देंगे बोलता हूं। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जितनी भी प्राप्तियां हैं, चाहे हमारी महिमा होती है, चाहे कोई, ये सब वास्तव में हमारे जीवन में ये प्रभु कृपा है, बाबा ने दीवी देन है। इसीलिए बाबा की देन के समय अगर मैपन आ जाए, मेरे को नमस्ते करते, मेरे को ये करते, तब वो व्यक्ति अंदर से मानसिक रूप से डिस्टर्ब होता है। और जो अंदर से डिस्टर्ब होता है वो कभी भी उसका मन एकाग्र नहीं होगा, और जिसका मन एकाग्र नहीं है, इसने मुझे ऐसा पूछा, इसने मेरे को सम्मान दिया, उसकी ज्योति नहीं जग सकती। इसलिए निरहंकारिता का गुण बड़ा जरूरी है। जितना निरहंकारी उतना सदा आत्मा का दीपक जलता रहे, तब जाकर के वो दीपक। तो कभी कभी ये अभिमान हमारे जीवन में दीपक को क्या करता है, दीपक की रोशनी को कम करता है। इसलिए हमें निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी, इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी स्थिति में रहो, अन्यथा अगर हम मान और शान इसी में रह गए रहेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि और आत्मा की तमन्ना बढ़ती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते जो भी कुछ दे रहे, किसी ने मिल रहे, ये बाबा के लिए मिल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं हम तो वही हैं जो पहले थे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, और जितना निरहंकारी उतना निगेटिव से मुक्त, और जितना आत्मा निगेटिव से मुक्त बनती है, जिसका मन एकाग्र है वो सदा ही निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें निरहंकारी बनने की जरूरत है। दूसरी बात है, अगर सदा हमें आत्मा की ज्योति को जागृत रखना है, उसके लिए सदा स्मृति जरूरी है। स्मृति रूपी बाती, जैसे वो दीपक कब जलता है, जब उसकी बाती तेल में डूबी है। अगर तेल से निकाल करके बाजू में रख दो, दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसी तरह परमधाम भी एक बहुत बड़ा कटोरा है, और हम दीपक यहां जल रहे हैं लेकिन हमारी बाती कहां डूबी रहे, परमधाम में। परमधाम के बजाय किसी व्यक्ति के तरफ बुद्धि लगाई, कोई वस्तु की तरफ लगाई, कोई और बातों में लगाई, तो दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसीलिए मेरी स्मृति रूपी बाती सदा परम धाम में वो शिव बाबा के साथ टिकी रहे, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत शिव बाबा हैं, वहां से ऊर्जा आती है स्मृति रूपी बाती से, तब दीपक जलता रहता है। इसीलिए मेरी बुद्धि एक शिवाय बाबा के कहीं भी प्रभाव में ना आ जाए, ना कोई व्यक्ति के प्रभाव में, ना कोई वस्तु के प्रभाव में, ना कोई विकारों के प्रभाव में। जहां बुद्धि प्रभावित हो गई, दीपक बुझ गया, दीपक की रोशनी कम हो गई। इसीलिए सदा मेरा ध्यान बाबा में लगा रहे। इसीलिए बाबा की जो मुरलियां ये चलती है, किसी लिए? ज्ञान किसी लिए है? ज्ञान है बुद्धि को सारा दिन प्रभाव से मुक्त करने के लिए। इतना ज्ञान मिला तो भी मेरे बुद्धि के ऊपर कोई बातों का, किसी व्यक्ति का प्रभाव है? प्रभाव वाला कभी भी योगी नहीं बन सकता। इसलिए बाबा के प्रभाव में ही आना है और किसी के प्रभाव में नहीं आना। भले हमें रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, वो बात अलग है, लेकिन प्रभाव में नहीं आना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग हमारा निरंतर बाबा के साथ लगा रहे, अर्थात स्मृति रूपी बाती सदा बाबा की स्मृति रहे, विधि पूर्वक योग लगा रहे हैं। अब घंटा तो आधा घंटा तक योग लगाया, लेकिन मन कहीं भटक रहा है, बुद्धि कहीं बाहर जा रहे हैं, और कहते हैं कि योग तो लगाया, लेकिन योग के समय ध्यान कहाँ था? भक्ति मार्ग में यही किया ना, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पे, राम राम राम, हाथ से माला फेर रहे, और ध्यान कहाँ है? बिल्ली में। योग में बैठे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, अचानक पीछे थाली का आवाज आया, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना, ध्यान कहाँ है? इसलिए ध्यान हमारा कहाँ रहता है वो इम्पोर्टेंट है। जिसका ध्यान सदा बाबा के तरफ आए, उसका दीपक सदा जलता रहे। जहां हमारा ध्यान है वहां मन होगा, जहां मन और ध्यान बाबा के तरफ आए, उसका सदा दीपक जलता रहे। इसलिए स्मृति रूपी बाती के ऊपर ध्यान। तीसरी चीज है, अगर हमारा दीपक सदा जलता रहे, उसके लिए ग्रंथ विचार सागर मंथन। जितना हम सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन करना अर्थात ग्रत डालते रहना, जैसे दीपक को जगाने के लिए क्या करते हैं, ग्रत डालते हैं, इसी तरह सारा दिन हमें विचार सागर मंथन करना है। जो भी सवेरे हम मुरली सुनी, उसका सारा दिन मन में क्या करना है, विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन के बजाय अगर उस तेल में कोई कचरा आ जाता है तो दीपक क्या होता है, फटफट करना शुरू हो जाता है, बुझ भी जाता है। इसी तरह कोई निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें बीच में आएगी तो दीपक की लाइट कम हो जाएगी। इसलिए हमें विचार सागर मंथन सदा करते रहना है। बाबा ने जो मुरली सुनाई, कोई भी पॉइंट को लेकर के अंदर से मन में चिंतन, और जितना यह चिंतन चलेगा उतना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। उसके बजाय ये ऐसा है, ये ऐसी है, कोई व्यर्थ बातें सुनेंगे तो दीपक की लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन अपनी लाइट को बढ़ाते जाना है, घटाना नहीं है। थोड़ा सा व्यर्थ चिंतन किया, परचिंतन किया, लाइट कम हो गई। बाबा की याद में भोजन खाया, लाइट बढ़ गई। अमृत वेला किया, लाइट बढ़ गई। मुरली से पहले आधा घंटा योग किया, मुरली ध्यान से सुनी, लाइट बढ़ गई। तो जिन बातों से लाइट कम हो जाती है उन बातों से किनारा करना है, तब जाकर के वो दीपक सदा जगता रहे, तब हमारी सदा दिवाली होती रहेगी, सदा हमारे जीवन में खुशियां होगी। तो इसलिए विचार सागर मंथन करना है, न कि व्यर्थ बातों का, जिसको कहते हैं ना सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद ही लक्ष्मी क्या होते हैं, घर में आती हैं। अगर सफाई नहीं है, कचरा है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। लेकिन विचार सागर मंथन कौन कर सकता है? सरस्वती किसको प्रसन्न होते आते हैं? जो हंस है, हंस अर्थात जो सबके गुण देखता है, विशेषता देखता है, अच्छाई देखता है। क्योंकि सरस्वती माँ किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठे। थोड़ा हमने थोड़ा सा कुछ किसी की विरद देखना शुरू किया, अवगुण देखना शुरू किया, तो सरस्वती माँ बुद्धि में नहीं बैठेगी, विचार सागर मंथन नहीं चलेगा, उसके वजह निगेटिव का चिंतन चलेगा। और जहां निगेटिव का चिंतन है वहां सरस्वती नहीं है, बुद्धि को ताला लग जाता है। मुरली का एक पॉइंट भी याद नहीं रहेगा, ज्ञान का मनन चिंतन भी नहीं चलेगा। और जिसका ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, वेरा चिंतन चलता है, उसका दीपक, उसकी लाइट क्या हो गई? ग्रत डाला ही नहीं है, ग्रत नहीं है, तो दीपक की लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये व्यर्थ कचरे वाली बातों से हमें बचना है, सबके गुण देखना है, अच्छाई देखनी है, कभी भी किसी के अवगुणों को नोट नहीं करनी है। अगर कोई आकर के सुनाता भी है तो क्या करना है? अगर कोई घर में कचरा डाल ला करके डालेगा तो क्या कहते हैं? कहेंगे हाँ रोज आया करो और जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे? कोई कचरा डालेगा उसको कहेंगे भाई तू उधर दूर दूर जाओ? लेकिन यहाँ क्या करते हैं, कभी कभी कोई किसी की विरद बातें सुनाता है तो और नजदीक सरकेंगे, कहेंगे और क्या हुआ? वो उठ के जा भी रहे, कहेंगे बैठो ना, थोड़ा चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। अगर ऐसी बातें सुनेंगे जहां अस्वच्छताएं, वहां दीपराज बाबा कैसे बैठेगा, वो दीपक कैसे जगेगा? इसीलिए दीपक को जगाने से पहले क्या करते हैं? सफाई भी करते हैं। इसीलिए हमें जो अनेक जन्म जन्मांतर से जो किचरा पड़ा हुआ है उसको ही सफाई करना है। वही सफाई नहीं हुआ फिर और भी रोज कचरा डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई भी किसी की व्यर्थ बातें अगर सुनाएगा तो उस व्यक्ति के लिए मेरी भावना क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और जिसकी किसी के लिए भावना जितनी खराब है उतना दीपक की लाइट कम हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी भावना खराब न हो। जहां भावना खराब है वहां फिर नफरत आई, घृणा आई, वैर आया, विरोध आया, सब बातें आ गई, फिर उनसे किनारा करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनके अंदर कोई गुण भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर कोई महिमा भी करेंगे उसके, कहेंगे हाँ हमको पता है वो कैसा है, आप उसकी महिमा कर रहे हैं, तो ऐसे का फिर वो दीपक, वो जागती ज्योति नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कुसंग से बचे रहो, झगमुई झगमुई बातों से बचे रहो। जो झगमुई झगमुई का ही चिंतन चलेगा, ग्रहत नहीं होगा तो दीपक की लाइट कम हो जाएगी, जागती ज्योति का अनुभव नहीं होगा। अगर हमारी अभी भी जागती ज्योति नहीं है तो हमारे भगत उनको कैसा अनुभव होगा? इसीलिए अब मुझे कोई भी व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। कोई अगर सुनाता है ऐसे व्यक्ति से कोई यज्ञ के बारे में, कोई यज्ञ निवासियों के बारे में, कोई बहनों के बारे में, सेंटर के बारे में, इधर उधर की कोई बातें सुनाता है ऐसे व्यक्ति से हमें किनारा करना है। पता है कि इसके पास बहुत सारा किचरा है, पता है कि वो जब भी मिलते हैं वो हमेशा वही सुनाता रहता है, इसीलिए उसे किनारा करना है। या उसको एक बार कहो कि हाथ जोड़ करके प्लीज मुझे ऐसी बातें मत सुनाए करो, अन्यथा फिर हम आपसे साथ नहीं रहेंगे, नहीं साथ में चलेंगे। और जब हम इन बातों से मुक्त रहेंगे तब सरस्वती माँ हमारे बुद्धि में बैठेगी, अर्थात अंदर से विचार सागर मंथन, अच्छी अच्छी बातों का चिंतन चलेगा। और जिसका अच्छा अच्छा चिंतन चलेगा खुशी होगी, दीपक सदा जागृत रहेगा, क्योंकि दीपक जागृत रहने के लिए ग्रत चाहिए, चिरा नहीं चाहिए, और वो ग्रत मिलता है विचार सागर मंथन करने से। इसलिए हमें सारा दिन क्या करना है, विचार सागर मंथन करना है, व्यर्थों का चिंतन नहीं करना है, और तब हमारा दीपक जगता रहेगा। और जिसका दीपक जगेगा ऐसा ही फिर उसी के घर में लक्ष्मी आएगी, अर्थात ऐसी आत्मा जहां लक्ष्मी आएगी उसी दुनिया में आएगी वो। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंदर से वो दीपक जलता रहे, इसलिए पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से हमें क्या करना है, थोड़ा सा किनारा करना है। तो कितनी बातें बताई, ये प्रैक्टिकल आपको बातें बता रहे, मैं खुद भी मेरा अपना अनुभव आपको बता। अगर समझो मैं कभी जाने अनजाने कभी अगर मेरे से हो भी जाता है किसी का थोड़ा सा परचिंतन कुछ किया, उसी दिन वो आत्मा अभिमानी स्थिति गायब हो गए, वो दीपक का अनुभव नहीं होता। इसीलिए तुरंत मैं जब रात को चेक करता हूँ, तुरंत अपने दिनचर्या के पर ध्यान रहता हूँ कि आज मैंने कुछ सुना या किसी के लिए भावना खराब की तो बाबा के सामने सॉरी करके, बाबा मेरे से गलती हो गई मुझे माफ करना, और फिर आगे नहीं होगा वो प्रतिज्ञा लेता हूँ। इसलिए ये बातें आत्मा की लाइट को कम करने वाली बातें हैं। जब बाबा उन आत्माओं को पसंद करता है, बाबा को आत्मा अच्छी लगती है तो हमें भी अच्छी लगनी है। इसलिए पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से मुक्त, पहली बात बताई अभिमान से मुक्त निरहंकारी स्थिति नम्रचित के संस्कार, दूसरा बताया हमारी बुद्धि रूपी बाती एक बाबा के प्रभाव में रहे, बुद्धि सदा बाबा के तरफ रहे, कोई व्यक्ति के तरफ कोई और प्रभाव में ना आए, वो ध्यान। तीसरी बात बताई पर चिंतन करने वाले व्यक्ति से दूर रहे, पर चिंतन की बातों से हमें दूर रहना है। चौथी बात है अगर सदा हमें अपनी ज्योति को जागृत रखना है, उसके लिए जो रोज बाबा ने जो दिनचर्या में खास, एक तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और साथ में मुरली, ये सवेरे सवेरे तीन बातें सभी ब्राह्मणों के लिए दी है, तो इन तीन बातों के तरफ थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि सवेरे सवेरे अगर ये तीन बातें हम करते हैं, अमृत वेला का योग थोड़ा सा मेहनत करके करते, जागृत होकर के क्लास के पहले थोड़ा सा टाइम निकाल करके, जैसे कि वैसे क्लास के पहले थोड़ा योग में पहुंच जाते हैं और साथ में मुरली सुनते हैं, अगर ये तीन चीजें करेंगे तो सहज, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप अनुभव करेंगे हमारे भ्रुकुटी में वो दीपक जल रहा है। ये तीन चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। लेकिन आजकल कई भाई बहने तो इन बातों में थोड़ा सा ढीला बन जाते हैं, अमृत वाला ढीला करेंगे, कोई ना कोई बहाना बता देंगे, या क्लास के पहले कहेंगे नहीं बहन जी थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा घर में पानी आता है, थोड़ा ये आता है, कोई ना कोई बहाना करेंगे, क्लास के पहले योग में पहुंचेंगे नहीं और सीधा आकर के मुरली सुन के जाएंगे, और हम तो खुश हो जाते हैं मुरली सुन ली, फिर कहेंगे पता नहीं हम मुरली तो रोज सुनते हैं फिर भी आत्माभिमानी स्थिति, फिर भी मेरा वो दीपक जलना हुआ अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि योग बिना करके मुरली सुनी है। अगर मुरली का सचमुच आनंद लेना है, मुरली से आपको बल प्राप्त करना है, उसके पहले जो बाबा ने जो नियम बनाए, चाहे मधुबन में भी नियम आए चाहे सेंटर पर भी नियम आए, लेकिन हम इन बातों में कभी ढीले बन जाते हैं। लेकिन नहीं, ये बाबा ने क्यों रखा है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि जब योग करके मुरली सुनते हैं तो मुरली से बड़ा आनंद आएगा, एकाग्रता आएगी। तो इसलिए ये तीन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, और जो ये तीन बातें करते हैं उनको सहज ही वो दीपक जगा हुआ या अनुभव होगा, अमृत वेला, क्लास के पहले का योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। नहीं तो आजकल क्या करते हैं, कहेंगे बहन जी हमारे घर में तो पीस ऑफ माइंड में आई, उसमें हमने सुन ली, कहीं व्हाट्सएप में सुन ली, कहीं मोबाइल में पढ़ ली, अब सेंटर पे तो जाएंगे नहीं, तो कैसा वो दीपक जलता रहेगा। ये तो बाबा ने जो साधन बनाया, चलो दोबारा एक बार रिवाइज होने के लिए, लेकिन ऑफिशियली हमें क्या करना है, सेंटर पर जा करके योग करके फिर बहनों के द्वारा मुरली सुनने से वो बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, हाजिरी भी आपकी लगेगी अच्छी। तो इसलिए इन बातों के ऊपर थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। ये साधन बाबा ने आपको इसीलिए दिए है, दोबारा आप उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा बार बार पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई सेंटर से कोई कनेक्ट नहीं रखो, अलग ही रहो, तो फिर वो ताकत नहीं मिलेगी, बल नहीं मिलेगा उसे। तो इसलिए इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो कितनी बातें हो गई, चार। पांचवी बात है, अगर हमारा दीपक सदा जलता रहे उसके लिए लोक लाज कोई नहीं, तो कभी कभी कोई दूसरे लोग दीपक बुझाने वाले भी होते हैं, तो दीपक बुझाने से क्या करते, जब पंखा चलता है या हवा चलते है, हम क्या करते, उसे बचाव करते हैं। तो इसी तरह मेरा सदा दीपक सदा जलता रहे उसके लिए जो भी बाबा ने नियम और मर्यादाएं दिए हैं, उस नियम मर्यादा में स्वयं को पक्का रखना है। जितना नियम और मर्यादा में पक्का रखेंगे उतना वो दीपक सदा, अगर मेरा दीपक नहीं जल रहा है, वो सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बन रही, इसका मतलब नियम मर्यादा में कुछ ना कुछ ढीलापन है। और सबसे नियम पक्का है पवित्रता का, जहां पवित्रता है वहां ही दीपक जलेगा, जहां पवित्रता में थोड़ी भी कुछ कमी हो गई, चाहे मनसा वाचा कर्मना भी वहां वो स्थिति नहीं रहेगी, दीपक बुझ जाएगा, अर्थात देह भान आएगा। इसलिए मेरा आंतरिक दीपक सदा जगता रहे, वो अनुभव होता रहे, उसके लिए पवित्रता की पक्की धारणा, जिसको बाबा कहते हैं भीषम धारणा, जैसे भीषम प्रतिज्ञा, पवित्रता की भीषम प्रतिज्ञा चाहिए। क्योंकि जितना जैसे पवित्रता है उतना वो दीपक जलता है। जैसे स्थूल में भी कोई दिया या दिया होता है, उसके अंदर केरोसिन होता है, अगर केरोसिन है तभी दीपक, अगर केरोसिन नहीं है तो दीपक नहीं जलता। पहले जमाने में एक त्रिकोणा सा यूज करते थे। तो इसी तरह हमारे शरीर एक दीपक है, दिया है, और इसके अंदर तेल है पवित्रता। तो जिसके पास जितनी पवित्रता की संभाल की है वो सहज ही निराकारी स्वरूप का अनुभव करेंगे, सदा अनुभव करेंगे मेरा दीपक सदा जागृत है। तो इसीलिए पवित्रता को हमें कभी भी माया के वश होकर के, अलबेलापन वश होकर के, चाहे मनसा वाचा कर्मना, पवित्रता में पक्का रहना है। और जितनी पवित्रता पक्की है उतना वो स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे, और इससे बहुत सारी सेवा कर सकेंगे। इसीलिए हमें इन पांच बातों की तरफ क्या करना है, अच्छी तरह ध्यान देना है। अगर ये पांच बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो सहज ही हम अपने भ्रुकुटी में सदा ही जागती ज्योति का अनुभव कर सकेंगे। और जिसकी जागती ज्योति है वो औरों की भी बुझी हुई ज्योति के तरफ क्या करेंगे, उसके संपर्क में जाने से, उसके व्यवहार से, उसके बोल से, उसके एक्टिविटी से बुझा हुआ दीपक भी क्या हो जाएगा, जग जाएगा। लेकिन पहले तो स्वयं का जागृत करने की जरूरत है। अगर स्वयं का जागृत नहीं है, दूसरों को कितना भी सुनाओ, कुछ भी करो, तो भी वो नहीं सुनेंगे। और इस दुनिया में जो भी कुछ अंधकार फैला हुआ है, जितना हम निरंतर अपना दीपक को जागृत करेंगे, औरों को भी दीपक जगाते रहेंगे, तो ये अंधकार क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इसलिए हमें कहते ना वो गीत भी है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। तो स्वयं की भी ज्योति को जागृत रखना है, उसको कोई भी प्रकार की विघ्न और समस्या से बुझने नहीं देना है, सदा दीपक को जागृत रखना है। और इस जागृत स्थिति में उमंग गुस्सा रहेगा, अनेकों की सेवा कर सकेंगे, जीवन की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, जो भी कुछ बीती हुई बातें हैं उसको बिंदु लग जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी दिवाली मैं देखना चाहता हूं। तो सदा ऐसे जागृत रहना है ताकि हम वायुमंडल को बदल सकेंगे, हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको भी खत्म कर सकेंगे, और जितना जागृत रहेंगे उतना भविष्य में हम राजाई प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए ये बाबा चाहता है, ये पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे हमें सदा ही कर्म क्षेत्र पर रहते हुए भी, सेवा करते हुए भी सदा जागृत रहने का उमंग, और ताकि हमारे चेहरे पर सदा खुशी रहेगी, तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनको लगेगा इनको इतनी खुशी कैसी मिल रही, तो जरूर आपके तरफ आएंगे। तो इसीलिए ऐसे हमें ये पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए जो भी आपको ये पांच बातें बताई, निरहंकारिता चेक करना है, कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं आता। अभिमान वालों की निशाने उसको फीलिंग आती है, और जहां फीलिंग आई वहां अभिमान है। तो कभी भी हमें अभिमान में नहीं आना है, चाहे कितनी भी कला हो, विशेषता हो, ये सब बाबा ने दी हुई देन है।